नमस्कार श्रोता, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से हबक्कूक नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, किंतु इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी। याद आता है मुझको क्रूस का वो नजारा, मेरे गुनाहों की खातिर बहती है खून की धारा, बहती है खून की धारा। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मैं मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हम सब इन दिनों बाइबल में से पुराने नियम की पुस्तक और उसके हबकूक नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक में हम सब देख रहे हैं कि हबकूक परमेश्वर से प्रश्न करता है और परमेश्वर उसका उत्तर भी देता है। तो इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। प्रेमी और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। इस घड़ी हमारी प्रार्थना है हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए जो अलग अलग स्थानों पर बैठकर आपके वचन का अध्ययन करना चाहते हैं। पिताजी, हमारी प्रार्थना है कि आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि वे आपके वचन को सुनकर समझ सकें, अपने जीवन में ग्रहण कर सकें और आपकी बातों को मानकर अपना जीवन चलाने पाएं। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो इस समय निराश हैं, परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं, बीमार अवस्था में हैं। पिताजी, आप उन पर भी दया दृष्टि करें, उन्हें छुएं, चंगाई दें, अपनी शांति उन्हें प्रदान करें। आज के वचन के द्वारा आप उनसे बोले और बातचीत करें, हम सब की सहायता करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हम सब हबकूक की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। हबकूक परमेश्वर से पूछता है, हे प्रभु, तू इस अन्याय और अपराध के लिए कुछ करता क्यों नहीं है? परमेश्वर उसे उत्तर देता है, मैं तुम्हारे दिनों में ऐसा काम करने पर हूं कि जब वह तुमको बताया जाए तो तुम उसकी प्रतीति न करोगे। परमेश्वर कसदियों को अर्थात बेबीलोन को उभार रहा था कि वे यहूदा के लिए दंड का कारण ठहरें। वे क्रूर और उग्र जाति के थे जो एक ही उद्देश्य रखते थे, सब देशों को जीतना और सबको दास बनाना। उनके लिए न तो किसी देश के राजा का सम्मान था और न ही उनके किसी हाकिम की मर्यादा को वे रखते थे। यहूदावासी सोचते थे कि वे परमेश्वर के अति प्रिय लोग हैं, इसलिए वह उन्हें पाप का दंड नहीं देगा। हो सकता है कि जब उन्होंने पहली बार पाप किया था तब वे सोच रहे होंगे कि परमेश्वर उन्हें दंड देगा, परंतु जब उन्होंने देखा कि परमेश्वर ने कुछ नहीं किया तो उन्होंने सोचा कि परमेश्वर ने देखा नहीं या वह चिंता नहीं करता है। सबोपदेशक की पुस्तक 8 अध्याय उसके 11 पद में उपदेशक कहता है, बुरे काम की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैंने पहली बार अपने अध्ययन काल में एक खेत से मकई की चोरी की थी, तब मैं बच्चा था। मैं मक्का लेकर के खेत के छोर तक पहुंचा ही था कि गर्जन के साथ मूसलाधार वर्षा होने लगी, तो मैं डर गया कि परमेश्वर मुझसे क्रोधित है। परंतु मैंने शीघ्र ही जाना कि वह परमेश्वर का दंड नहीं था और मैं बेधड़क चोरी कर सकता हूं। मेरे प्रियो, मानव स्वभाव बदलता नहीं है। जो पाप छिप कर किए जाते थे अब खुलकर किए जा रहे हैं। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि अब पाप परमेश्वर की दृष्टि में गलत नहीं और वह हर एक पाप का दंड नहीं देगा? कदापि नहीं। परमेश्वर ने न तो अपने मानक बदले हैं और न ही अपनी विधियां। यद्यपि वह बुराई का बदला तुरंत नहीं देता है, उसका दंड निश्चय ही आपको मिलेगा। जी हां, आज बहुत कम लोग परमेश्वर के दंड में विश्वास करते हैं। वे हबकुक के समान सोचने लगते हैं। हबकुक ने अपने देशवासियों को अत्यधिक भ्रष्ट होते देखा, यहां तक कि वे पाप को निर्लज्जता से खुलकर करने लगे थे और परमेश्वर चुप था। आज की दशा देखकर क्या आपके मन में ऐसा विचार नहीं उठता है? क्या परमेश्वर कुछ कर रहा है? ऐसा तो कुछ प्रतीत नहीं होता। उसने तो इंग्लैंड के कुछ बाइबल विज्ञान के ज्ञाताओं को यहां तक कहने की अनुमति दे दी कि परमेश्वर मृतक है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर मनुष्यों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। क्या यह सच है कि वह हस्तक्षेप नहीं कर रहा है? क्या परमेश्वर मनुष्य को कामों पर प्रबल नहीं दिखाई देता? परमेश्वर ने हमें समृद्धि प्रदान की है, तो हम यहां तक कि परमेश्वर के जन भी निश्चिंत हो गए हैं। मेरे प्रियो, हबकुक का मन अति दयालु था और यही कारण था कि वह नियमों के उल्लंघन की अति का दंड से वंचित रहना देखकर अप्रसन्न होता है। वह देख नहीं पा रहा था कि निर्दोष का शोषण किया जाए और उसे नष्ट किया जाए। वह परमेश्वर से पूछता है, हे परमेश्वर, तू कुछ करता क्यों नहीं है? अस्तु, परमेश्वर के पास उसके प्रश्न का उत्तर था। और यदि आपका भी यही प्रश्न है तो उसके पास इसका भी उत्तर है। तो आइए हम हबकुक की पुस्तक उसके एक अध्याय और उसके 5 पद को पढ़ें। यहां पर हम परमेश्वर के उत्तर को देखेंगे। एक उसके 5 पद में लिखा है, जाति जाति की ओर चित लगाकर देखो और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूं कि जब वह तुमको बताया जाए तो तुम उसकी प्रतीति न करोगे। कहता है, जाति जाति की ओर चित लगाकर देखो। परमेश्वर हबकुक से कहता है कि वह आंखें खोले और संसार की ओर देखे कि परमेश्वर क्या कर रहा है। एक के बाद एक संकट उत्पन्न हो रहे हैं। उत्तर में अश्शूरों का महान साम्राज्य पराजित किया गया है और उसकी राजधानी नीनवे ध्वंस की जा चुकी है। फरात नदी के तट पर एक राज्य का उदय हो रहा है जो कर्कामिश के युद्ध में मिस्र को हरा चुका है। यह विजेता नबूकदनेस्सर है जो बेबीलोन को विश्व शक्ति के स्तर पर ला रहा है। परमेश्वर हबकुक से कहता है कि वह सब जातियों में देखे कि परमेश्वर कुछ कर रहा है या नहीं। परमेश्वर कह रहा है, मैं दूर बैठा तमाशा नहीं देख रहा हूं, मैं पूरी तरह मग्न हूं। इसका अर्थ यह नहीं कि वह अधीन है और दबाव में आकर कुछ कर रहा है। परमेश्वर इस जगत में अपनी सत्ता के साथ काम कर रहा है। वह पाप के लिए कुछ कर रहा है। जाति जाति की ओर चित लगाकर देखो और बहुत ही चकित हो। तब वह कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूं कि जब वह तुमको बताया जाए तो तुम उसकी प्रतीति न करोगे। परमेश्वर के कहने का अर्थ है कि जब वह अपने काम प्रकट करेगा तब लोगों को विश्वास नहीं होगा। मैं बहुत कुछ कर रहा हूं, और सच तो यह है कि जब हबक्कूक को परमेश्वर के काम का पता चलेगा तब वह परमेश्वर से निवेदन करेगा कि वह धीरज धरे। यही बात पौलुस ने अंताकिया के पिसिदिया में अपने प्रचार में कही थी। प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 38 से 41 पद में कहता है, इसलिए हे भाइयों, तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है, और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। इसलिए चौकस रहो, ऐसा ना हो कि जो भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में आया है तुम पर भी आ पड़े। हे निंदा करने वालों, देखो और चकित हो और फिर मिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में एक काम करता हूं, ऐसा काम कि यदि कोई तुमसे उसकी चर्चा करे तो तुम कभी विश्वास न करोगे। मेरे मित्रों, यहां पर देखिए पौलुस हबक्कूक 1 अध्याय उसके 5 पद का संदर्भ दे रहा है। यह इस पद का एक आश्चर्यजनक प्रसंग है। पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने उद्धार प्रदान किया और छिपकर नहीं किया। यीशु के क्रूसीकरण के समय संपूर्ण विश्व से यहूदी यरूशलेम में आए हुए थे। उन्होंने हर जगह यह समाचार फैला दिया कि नासरत का यीशु क्रूस पर मारा गया, और कहा जाता है कि वह फिर जी उठा है। यही यहूदी पेंतिकोस्त के दिन फिर से यरूशलेम में थे, जब पवित्र आत्मा एक छोटे से समूह पर उतरा जो प्रभु यीशु के अनुयायी थे। उस समय और आने वाले दिनों में असंख्य मनुष्यों का उद्धार हुआ। पहले तो रोमियो ने इस पर ध्यान नहीं दिया। पौलुस कहता है कि उनके युग में परमेश्वर ने काम किया, ऐसा काम कि यदि कोई तुमसे उसकी चर्चा करे तो तुम कभी विश्वास ना करोगे। मेरे मित्रों, आज हम कहते हैं परमेश्वर पाप के लिए कुछ क्यों नहीं करता है। परमेश्वर ने इस विषय में कुछ किया है। 2000 वर्ष पूर्व परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र मरने के लिए हमें दे दिया। उसने संसार की गतिविधियों में हस्तक्षेप किया और वह फिर से करेगा, परंतु संसार बड़े आराम से पाप करता जा रहा है, वरन आनंद ले रहा है। परमेश्वर का काम अद्भुत है। परमेश्वर अपना काम कर रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है कि पौलुस हबक्कूक की पुस्तक 1 अध्याय उसके 5 पद को प्रासंगिक बनाता है। हबक्कूक के समय भी परमेश्वर का काम हो रहा था और परमेश्वर अपना काम कर रहा था। संपूर्ण निर्लज्जता, युद्ध और पापों के उपरांत भी परमेश्वर प्रबल था और दंड देने के लिए निकल पड़ा था। आज भी परमेश्वर अपना काम कर रहा है और समय के निश्चितता में वह अवश्य ही दंड देगा। हबक्कूक की पुस्तक 1 अध्याय के 6 पद में लिखा है, देखो मैं कसदियों को उभारने पर हूं, वे क्रूर और उतावली करने वाली जाति है, जो पराये वास स्थानों के अधिकारी होने के लिए पृथ्वी भर में फैल गए हैं। परमेश्वर हबक्कूक से कहता है, फरात नदी के तट पर देख, एक राष्ट्र का उदय हो रहा है। जो संसार की पहली सबसे बड़ी विश्व शक्ति होगा। हम दानियल की पुस्तक में देख सकते हैं कि वह राष्ट्र सोने का सिर था और दानियल के दर्शन में सिंह था। संसार के महान राष्ट्रों में बेबीलोन सूची में सबसे ऊपर था। यहां लिखा है, जो पराय वास स्थानों के अधिकारी होने के लिए पृथ्वी भर में फैल गए हैं। परमेश्वर हबकूक से कहता है कि बेबीलोन यहूदा उनसे छीन लेगा। यह सुन हबकूक चौंक गया। तब आगे हम देखते हैं कि वे क्रूर और उतावली करने वाली जाति हैं। जी हां, यह बेबीलोन का अति उचित वर्णन है। वे क्रूर, घृणा करने वाले और उतावली करने वाली जाति संसार को जीतने निकल पड़ी थी। उन्होंने यरूशलेम पर 3 बार आक्रमण किया और 3री बार उसे ध्वंस कर दिया। बेबीलोन स्वयं में कानून था। वे अपने आप को सबसे बड़ा समझते थे। वे अपने तुल्य किसी को स्वीकार नहीं करते थे। हबकूक की पुस्तक 1:7 में आगे लिखा है, वे भयानक और डरावने हैं। वे आप ही अपने न्याय की बड़ाई और प्रशंसा का कारण हैं। कहता है कि वे आप ही अपने न्याय की बड़ाई और प्रशंसा का कारण हैं। उनमें आत्मविश्वास है और गर्व है। नबूकदनेस्सर ने यह गुण प्रकट किया, उस महान राज्य का बनाने वाला। उसने यही कहा कि सब अपने आप में आत्मविश्वास रखें। दानियल की पुस्तक में हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। एक समय तो यह था कि वह यह भी नहीं जानता था कि वह कौन है। वह बैल के समान घास खाता था। वह जानवरों के समान हो गया क्योंकि परमेश्वर उसे सिखाना चाहता था। हबकूक 1:8 में आगे हम पढ़ते हैं, उनके घोड़े चीतों से भी अधिक वेग से चलने वाले हैं और सांझ को अहेर करने वाले हुंडारों से भी अधिक क्रूर हैं। उनके सवार दूर दूर कूदते फांदते आते हैं। हाँ, वे दूर से चले आते हैं और अहेर पर झपटने वाले उकाब के समान झपट्टा मारते हैं। मेरे प्रियो, यह कैसा चित्रण है। बेबीलोन की घुड़सवार सेना के जोड़ में अन्य कोई देश नहीं था। मिस्रियों की विशेषता रथ सेना थी। अशुरों के रथ आधुनिक थे, परंतु बेबीलोन के पास घुड़सवार सेना थी। लिखा है, सांझ को अहेर करने वाले हुंडारों से भी अधिक क्रूर हैं। जब हम छोटे थे तब वहां हुंडार अर्थात भेड़िये बहुत हुआ करते थे। यदि आपका सामना उनसे हो तो आवश्यक था कि एक भेड़िये को आप गोली मार दें, जिससे कि वे सब उस पर झपट पड़ें और आप बच जाएं। लिखा है, और अहेर पर झपटने वाले उकाब के समान झपट्टा मारते हैं। बेबीलोन की सेना भूखे भेड़ियों के समान, खूंखार चिड़ियों के समान अपने शिकार पर टूट पड़ती थी। कसदियों, बेबीलोन वासियों की यही कहानी थी। मेरे मित्रों, इन सब बातों को सुन करके आप समझ सकते हैं कि वे कितने खूंखार लोग थे, कितने निर्दयी लोग थे, और परमेश्वर इनको तैयार कर रहा था कि अपने प्रजा के लोग जो उसकी बातों को नहीं मान रहे हैं, नहीं सुनते हैं, उसकी ओर नहीं फिर रहे हैं, उन तक इनको पहुंचाए। मेरे प्रिय मित्रों, हबकूक के प्रश्नों का उत्तर परमेश्वर यहां पर देता है और वह कहता है कि अपने नियत समय में वह अपने कार्य को प्रकट करेगा और कहता है कि तुम विश्वास भी न करने पाओगे। जी हां, परमेश्वर अद्भुत है। आज भी वह अपने कार्यों को करता है। उसके कार्य में देरी अवश्य होती है, परंतु अपने निश्चित समय में उस कार्य का वह न्याय करता है। कोई भी व्यक्ति पाप करके दंड से बच नहीं सकता है, चाहे वह कोई क्यों ना हो। जी हाँ, परमेश्वर न्यायी है और वह सबको बराबर का दंड देता है। मेरे प्रिय मित्रों, आइए आज के इस अध्ययन में हम अपने आप को देखें, वचन के प्रकाशन में देखें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे और हमारे जीवन में जो भी प्रश्न है परमेश्वर के सामने रख दें, क्योंकि वह उसका उत्तर देता है। आज भी वह उत्तर देता है। क्या आपके पास कुछ प्रश्न है? क्या आप चाहते हैं कि वह उसका उत्तर दे? यदि हाँ, तो आप उसके सामने में रख दें और इंतजार करें कि वह अपने समय में आपको उत्तर दे। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
किसने छुआ मुझे, किसने छुआ मुझे, किसने छुआ मुझे, किसने छुआ। यीशु ने उनसे ये पूछा, यीशु ने उनसे ये पूछा, आखिर मुझको किसने छुआ, मुझे किसने छुआ, मुझे किसने छुआ, मुझे किसने छुआ, मुझे किसने छुआ।